Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
यह कर्तव्य होता है, अर्थात यह एक समझदारी होती है। तो समझदारी और कर्म, जिसको अभी कर्तव्य कहा, तो ये दोनों का आश्रय कौन है और इन दोनों से उपलक्षित कौन होता है? आपकी जो समझदारी है और आपकी प्राण शक्ति के द्वारा जो आप कर्म करते हैं, तो दोनों से उपलक्षित वह एक हिरण्यगर्भ या परमात्मा होता है। एक बात, यहां से हम लोग चल पड़े और क्रमशः वहां परमात्मा तक पहुंचे। अब जो शरीर रूप में जब हम कर्म करते हैं, तो शरीर क्या होता है? द्रव्यात्मक होता है। भूते भीर व्यजायत, भूत ही पहले कहा था, तो भूते भीर भूत ही कार्य कारण लक्षण ही कार्य करण लक्षण ही, तो कार्य करण लक्षण ये भूत, इससे क्या बना? कहा कि शरीर बना। ये शरीर भी आपका दिव्य है, क्योंकि परमात्मा द्वारा प्रदत्त है और इसको बिगाड़ने का आपको अधिकार नहीं है। एक सज्जन है, उनसे किसी ने कहा कि आप वृथा समय गंवाते हैं, मदिरा पान करते हैं। तो वो बोले कि मेरी कमाई, मेरा पैसा, मेरा शरीर, मैं करता हूं, तुम्हें क्या मतलब? हमारे पास ये बात आई तो हमने कहा कि उनसे बोलो कि तुम्हारा शरीर कहां से हुआ, ईश्वर ने तुम्हें बना के दिया। तो ईश्वर के प्रति अपराध है कि आप उस शरीर को नष्ट करते। हमारे श्री गुरुदेव कहते थे कि साधक का यह कर्तव्य होता है कि वह शरीर को स्वस्थ रखे, नियम से, संयम से, यह भी उसकी बुद्धि में आना चाहिए। तो कह दो कि शरीर हमारा है और हम चाहे जैसे रखेंगे, तो दिव्य विभूतियां जो प्रकट हुई हैं ईश्वर की, उनको हम लोग तो महाराज साधु संत लोग तो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपानी, ईश्वर का प्रतिरूप समझ समझ कर उन्हें प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि हम इस शरीर को चाहे जैसा नष्ट करें, ये शरीर आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। इसलिए शरीर को भी छोटा नहीं समझना और उससे केवल भोग का काम लेना है, ये नहीं समझना। उसको चिकना चुपड़ा करते रहना है, ये नहीं समझना। उसका सदुपयोग करना है, क्योंकि ईश्वर ने दिया है आपको सदुपयोग के लिए, इसलिए महात्मा लोग बोलते हैं। तो ये शरीर ये क्या है? यह द्रव्यात्मक है और ये ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ। और अंतःकरण क्या है? सूक्ष्म शरीर। कहा वृत्त्यात्मक है, एक द्रव्यात्मक है और एक वृत्त्यात्मक है। और इनका जो आश्रय, इनका आश्रय जो है वो कौन है? कहा अहम है। तो इनका जो आश्रय अहम रूप में, उसको जानो। तो ये अहम कहाँ रहता है? गुहम प्रविश्य तिष्ठन्तिम। तो ये अहम जो है वह शुद्ध है, वह चैतन्य है, उसकी खोज, उसका अनुसंधान होना चाहिए। और ये आगे के मंत्र में यह बात कही जाएगी कि उसका अनुसंधान करो। और इसलिए क्योंकि देखो, ये मंत्र, कोई कोई मंत्र ऐसे हैं जो अन्यत्र भी हैं, जैसे आगे का मंत्र जो है अरण्योर निहितो जात वेदा, यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आया है, लेकिन वहां अग्नि की स्तुति में आया है। और वही मंत्र जब यहां आया तो उसका अर्थ बदल गया। क्यों? क्योंकि यहां एतद वही तत् जो लग गया, तो एतद वही तत् लग जाने के कारण यहां स्तुति नहीं है, अग्नि की स्तुति में नहीं है, यहां आत्मदेव का निरूपण है, आपके अपने आत्मस्वरूप का निरूपण है। तो कहा कि अदिति और प्राण इनका आश्रय कौन है? मैं हूं, और मैं वही परमात्मा का स्वरूप है। एतद् वही तत् वही परमात्मा का स्वरूप है, यह एतद् वही तत् के द्वारा कहा जा रहा है। तो देवतामयी सृष्टि करती है, ये अदिति देवतामयी सृष्टि करती है, अर्थात इस प्रज्ञा शक्ति से, इस समष्टि प्रज्ञा से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, जिनके अनुग्राहक देवता होते हैं, विषयों की उत्पत्ति होती है, यह भूत भौतिक सृष्टि बन जाती है द्रव्यात्मक, और उतना ही नहीं देवता होते हैं, इसी से देवता उत्पन्न होते हैं, कल सुनाया था आपको, और वृत्तियां भी इसी से उत्पन्न होती हैं। इतनी बड़ी सृष्टि यह अदिति करती है, और अदिति जिसमें भेद नहीं है। तो जब आप उस अभेद बुद्धि तक जाएंगे, तब आपको अपनी संहार शक्ति का भी ज्ञान होगा, अर्थात इस संपूर्ण फैलाव को, जो वृत्तियों का है, देवताओं का है, विषयों का है, इंद्रियों का है, यह जितना फैला हुआ प्रसार है, उसके मूल में आप जाएंगे, अपनी शुद्ध अहम की खोज करेंगे, तो उस परमात्मा से, परब्रह्म परमात्मा से एक हो जाएंगे, क्योंकि इसका आश्रय वही है। यह जो आपका मैं है, वह चैतन्य है, और वह परमात्मा से एक है। एतद् वही तत् के द्वारा यह बात कही गई, और यह आपका मैं सर्वाश्रय है, सबका आश्रय, सब आपसे प्रकट हो रहे। यह आपका मैं प्राणाश्रय है, प्राणों को भी यह आश्रय देता है। यह आपका मैं अदित्याश्रय, अदिति को भी वह जन्म देता है। चैतन्य में कुछ प्रयास नहीं करना, आपको अभी बताया था, बस उधर दृष्टि जाते ही वह, और गुहाश्रय, ये हृदय की गुहा का भी आश्रय आपका चैतन्य है, और भूताश्रय है, जितने भूत या अन्न या अन्न के द्वारा, ये भी बताया था, प्रथम विकार, ज्ञान विकार, तो यह सबका वही आश्रय। तो सृष्टि को, समष्टि को आप अपने अहमर्थ के साथ एक करें। इसलिए कहते हैं कि सब में अपनी आत्मा को देखते हैं, सब में अपनी आत्मा को देखते हैं। तो आत्मा को आप जानेंगे तब ना सब में आत्मा को देखेंगे, जानते ही नहीं तो कैसे देखेंगे। खुद में आनंद है नहीं, जब स्वयं में आनंद है नहीं, तब क्या होगा? माने आनंद के है नहीं, क्या है, लेकिन जानते नहीं है, आनंद को भी जानते नहीं, तब आनंद के भिखारी बन जाते हैं। तब कहते हैं रसगुल्ले से कि हमें आनंद दो, समोसे से कि हमें आनंद दो, बहुतों से आनंद मांगने जाते हैं, और आनंद स्वरूप आप स्वयं, तो स्वयं जो आनंद स्वरूप है, वो जाके और दूसरों से मांगते रहे। तो यह जो शुद्ध अहमर्थ है आपका, जो सबका आश्रय, जो अदित्याश्रय, जो भूताश्रय, सर्वाश्रय, प्राणाश्रय, गुहाश्रय, जो सबका आश्रय है, वह अमर्थ, वह ब्रह्म है। एतद् वही तत् के द्वारा ये बात कही जा रही है, और एतद् वही तत् के द्वारा वह प्रश्न जो नचिकेता का था, वह भी बताया जा रहा है। तत् जो प्रश्न तुमने कहा, पूछा था, जो धर्म और अधर्म से भी परे है, जो कार्य और कारण से भी परे है, ऐसा जो भोक्ता भोग्य से परे है, जो विष्णु का परम पद है, वह अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, तो ऐसा जो पद है, तो उसको तुम जान लो। ये बात कहा, तो एतद् वही तत् यही वही तुम हो। तो प्राण समन्वित अदिति का आश्रय, और अदिति अवच्छिन्न, अदिति से उपलक्षित, प्राण समन्वित अदिति का आश्रय, प्राण क्रिया शक्ति, अदिति प्रज्ञा शक्ति, इसका आश्रय कौन? वही आपका चैतन्य, वह परमात्मा से भिन्न नहीं है, तो वह उसका आश्रय और अदिति से अवच्छिन्न, अदिति जो मूल उपाधि बनी उससे वह अवच्छिन्न चैतन्य है। जहाँ आपको भान होता है वहाँ वह भान, उस भान में भी वही चैतन्य बैठा हुआ है। समस्त सृष्टि का भान होता है, ज्ञान में तप है ना, रास थोड़ी है, तो समस्त सृष्टि का भान आपको हो रहा है। वह चैतन्य शुद्ध चैतन्य उसका आश्रय है और उस भान में भी वह चैतन्य बैठा हुआ है, इसलिए बोलते हैं अवच्छिन्न चैतन्य, अदिति अवच्छिन्न चैतन्य और अदिति का आश्रय चैतन्य, और उस अदिति से उस चैतन्य को ही उपलक्षित किया जाता है, वह आपकी आत्मा वह आत्मदेह, और यह शुद्ध अहम पद है। और लक्ष्यार्थ में कहा गया एतद्वै तत्, यह जो आपका चैतन्य है वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। आगे के मंत्र में चले क्योंकि वहाँ एक और युक्ति ली जा रही दूसरे ढंग से और बताते हैं। तो कहा कि अरण्योर निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवी द्यो जाग्रवद्भिर हविष्मद्भिर मनुष्य ए भी अग्नि एतद्वै तत्। तो इसमें दृष्टांत लिया, तो गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी अरण्योर निहितो जातवेदा। अरणिया होती हैं यज्ञ में, आप लोगों ने देखा होगा अरणी मंथन करते हैं, तो एक ऊपर की अरणी होती है एक नीचे की अरणी होती है, और उसमें मंथन करते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। तो इसको भगवान भाष्यकार अधियज्ञ बोल रहे हैं। तो ये जो यज्ञ चल रहा है तो इसमें कहा कि उत्तर की अरण्य और दोनों अरणी को ले लिया, द्विवचन है, तो ऊपर की अरणी और नीचे की अरणी, और ये क्या है लकड़ी है महाराज, लकड़ी। और जातवेदा, इसमें जातवेदा किसको कहते हैं, अग्नि को, जो पैदा होते ही उसका ज्ञान हो जाता है, अर्थात अग्नि जैसे ही प्रकट होती है आप उसको देख सकते हैं। आकाश को भले ना देख पाते हो, वायु को भले ना देख पाते हो, लेकिन अग्नि को आप देख पाते हैं। तो अरण्योर निहितो जातवेदा, तो जातवेदा और कैसा है, गर्भ इव जैसे कि सुभृतो गर्भिणी भी, जैसे जो गर्भिणी स्त्री होती है वो अपने गर्भ को भली प्रकार से पोषित करती है, गर्भ इव सुभृता अर्थात भली प्रकार से उसको पोषित करना, सुभृता गर्भिणी भी, गर्भिणी के द्वारा जो गर्भ है वह पोषित होता है, उसी प्रकार दोनों अरणियों के बीच में यह जातवेदा स्थित है, और समय पर प्रकट होता है, जैसे गर्भ प्रकट हो जाता है वैसे यह प्रकट होता है। दिवे दिव इज्यो जागृवत भीर, और जो जागृत है अर्थात अर्थ लिया गया जो प्रमाद शून्य है, जिनको प्रमाद नहीं है, और हविष्मत भी होम सामग्री से युक्त है अर्थात होम करते हैं, इनको दिवे दिव कहा है ना, वो है शब्द दिवे दिवे, अर्थात प्रतिदिन इनको नित्य प्रतिदिन ऐसे जो जागृत है और होम सामग्री से युक्त है, इज्ञः स्तुति करने योग्य है मनुष्यों के द्वारा, ए भी अग्नि, यह अग्नि जो है यह स्तुति करने योग्य है। आपको लगेगा पहले प्रथम दृष्टि में हमें भी ऐसे ही लगा, कुछ विचित्र सा मंत्र है, क्योंकि उसको उसकी स्तुति करने योग्य है, और फिर कहते एतद्वैतत, यही वह ब्रह्म है। तो ऐसा लगता है कि जात वेदा की स्तुति है, लेकिन उपलक्षित किसी और को किया जा रहा, ऐसा लगता है अग्नि की स्तुति है। ए भी अग्नि ही ऐसे स्पष्ट यहाँ कह रहे, तो ठीक था भाई, आपने पहले बताया नारायण कि वह अदिति है, वह प्राण है, वह समष्टि प्रज्ञा है, समष्टि प्राण है, वो तो ठीक है। अब यहाँ कुछ और ही बात कह दी, उस क्रम से कुछ हटकर यहाँ बात कही जा रही है, पर एतद वैतद। तो ये उत्तर अरणी और अधा अरणी, तो अधियज्ञ रूप से अब यहाँ उसको अधियज्ञ करके लिया गया। जो गीता में भी भगवान अधियज्ञ कहते हैं आठवें अध्याय में, अधियज्ञो अहमेवास्मि, भगवान कहते हैं अधियज्ञ मैं ही हूँ। मान लो वो भगवान ने यहीं से लिया, उसी को समझा रहे, गीता उपनिषद है। तो बोलते हैं महाराज जी एक स्थान पर, कल कोई सुना रहा था, तो महाराज जी ने कहा कि सारे मंत्र गीता में कहां कहां से मंत्र कैसे अर्थ रूप में या शब्द रूप में लिए गए हैं, इस पर किसी ने अभी तक अनुसंधान नहीं किया, रिसर्च वर्क नहीं हुआ है, ऐसे महाराज जी बोले हैं। तो उसी बात किसी ने कल सुनाई थी, तो आज ध्यान में आ गया कि यहाँ भी वैसे ही वही बात है, अधियज्ञो अहमेवास्मि, मैं ही वह अधियज्ञ हूँ। तो यहाँ आत्मदेव का निरूपण है यहाँ पर। तो कहा कि उत्तर और अधा अरणी के बीच में जो स्थित है और होम किए हुए संपूर्ण पदार्थों का भोक्ता वही बनता है, इसलिए यह अध्यात्म रूप भी है, यह जात वेदा अग्नि है। जैसे गर्भिणी स्त्रियां शुद्ध अन्नपान आदि का के द्वारा गर्भ की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करती हैं, अच्छा खाओ, अच्छे विचार करो, यहाँ तक हमारे देश में कहते हैं, उसी प्रकार यज्ञ करने वाले जो है योगी जन, अर्थात जो यज्ञ करने वाले योगी है, कर्म योगी कह लो, तो योगी जन जिसे धारण करते हैं और घृत आदि आहुतियों के होम सामग्री के द्वारा कर्म परायण जो है, धर्मात्मा है, जागरणशील है, वो भी प्रमाद शून्य जो याजक है, क्योंकि जागरवत भी हविष्मत भी, तो प्रमाद शून्य भी बताते और अपना कर्म भी ठीक ठीक नियत करते हैं, तो उनकी ध्यान भावना से युक्त योगियों द्वारा यज्ञ और हृदय देश में स्तुति किए जाने योग्य है। कौन? यह ब्रह्म, ऐसा जो अग्नि है, अग्नि को यहाँ ब्रह्म बता रहे, निश्चय ही वह प्रकृत ब्रह्म है। तो हविष्मद भी, आज्यादिमद भी, ध्यान भावनावद भी, ऐसे कह रहे हैं भगवान भाष्यकार यहाँ, तो ऐसे उसका विचार किया जाता है। तो अब क्या है कि उत्तर अरणी और अधा अरणी, इससे अग्नि प्रकट होगा। तो लकड़ी का मंथन लकड़ी से किया जाता है, मंथन लकड़ी से किया जाता है, और यहाँ पूरे समय गुहाम प्रविश्य कहके हृदय को दिखाया गया है। तो हृदय से मंथन होगा, अनुसंधान यहाँ पर संधान, तो हृदय में हृदय से मंथन हुआ। तो उत्तरारणी कौन है? तो गुरुदेव है, महाराज जी ने इसकी व्याख्या की। तो कहा उत्तरारणी, उत्तर अरणी, ऊपर की अरणी, वह गुरुदेव है, और अधा की जो अरणी है वो शिष्य है। तो तत्संधानम प्रवचनम, अन्यत्र एक जगह कहा गया कि तत्संधान, उसका जो संधान करते हैं, मंथन करते हैं, वह क्या है? प्रवचन है। तो उसका संधान प्रवचन के द्वारा होता है, तब ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, उसके बिना ज्ञानाग्नि प्रकट नहीं होती। कहा कि हम तो शास्त्र में सब लिखा हुआ है, वो पढ़ लेंगे। एक बालक रहता है हमारे यहाँ आश्रम में, तो उसने वो कंप्यूटर में पढ़ता है, तो कंप्यूटर में पढ़ता रहा, अब पढ़ पढ़ के और फिर उसको लगा कि अब इसी लाइन में लगते हैं और ये साइंस वाइंस छोड़ो, तो छोड़ छाड़ के ऋषिकेश आ गया। ऋषिकेश आया तो उसने सोचा हम एकांत में ध्यान करेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। अब जिस आश्रम में जाए वो बालक, उसी आश्रम में बोले लौकी काटो, आश्रम की कुछ सेवा करो। अब बेचारा दिल्ली से भाग के आया लड़का, अच्छे भले घर का लड़का, और उसको कहें कि अब तुम ये सब सेवा काम करो, इसके बिना ज्ञान नहीं होगा। अब वो सेवा की महत्ता को समझे ही नहीं, उसको तो यही कि कंप्यूटर से ज्ञान होगा। तो अपनी परेशानी किसी एक दूसरे विद्यार्थी को, उससे बड़े विद्यार्थी को बताए। तो विद्यार्थी ने कहा कि तुम ऐसा करो, ऋषिकेश छोड़ दो और पास में रायवाला है, माँ का आश्रम है, वहां चले जाओ, क्योंकि वहां ध्यान करने वाले को कोई विक्षेप नहीं करता, सब कहते हैं तुम्हें कुटिया में रोटी दे देंगे, भिक्षा की खिड़की बनी हुई से रोटी दे दे, तुम वहां चले जाओ। तो अब यहाँ आ गया बालक। अब वो कितनी देर ध्यान में, हमने कहा बहुत खुशी के बाद भाई, कुछ इसकी बुद्धि में स्पष्टता हुई तब तो आया ध्यान करने के लिए बच्चा। तो हमने कहा बहुत खुशी की बात है, कोई इसको कुछ मत कहना, ये जो चाहे करे। अब वो बालक वहां ध्यान करे तो चार दिन, दो दिन, तीन दिन ध्यान करे, उसके बाद बाहर आ जाए तो क्रिकेट खेले। बड़ा आनंद आए, वो क्रिकेट खेले, गैया बच्चिया के साथ में झूमे, गांव के बच्चों को बुला लाए, रोड पर क्रिकेट खेले। तो सब बोले ये कोई साधु है, बड़े जो ब्रह्मचारी वो बोले कोई साधु है। हम सबको बोले कोई कुछ मत कहना, करने दो उसको बच्चे को जो करना है। फिर सबने कहा कुछ सत्संग करना चाहिए, तो ये कंप्यूटर में बैठ के शास्त्र पढ़े। शास्त्र पढ़े तो अब उसकी वासना जाग गई, मैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ूंगा। अब ज्योतिष शास्त्र पढ़े, कभी व्याकरण शास्त्र पढ़े, फिर बोला कि मैं कोई पंडित ढूंढता हूं। हमने कहा ठीक है, तुम पंडित ढूंढो, व्याकरण शास्त्र पढ़ो, वो पढ़ो। तो ऐसे जो अपने आप मन मानी चलते हैं। फिर ज्योतिष शास्त्र उसने बहुत पढ़ा तो बोला मैं तो राहु की दशा में घर छोड़ दिया हूं। खुद ही बताया, हमें तो आता नहीं ज्योतिष शास्त्र, इतनी रुचि नहीं। तो बोला मैं तो राहु की दशा में घर छोड़ दिया हूं और ये मुझे अभी इतने साल तक परेशान करेगा, इसलिए मैं वहां जाता हूं, वहां जाता हूं। तो क्या होता है इसमें, बात क्या है कि एकांत में जब आप बैठते हैं तो पूर्व पूर्व की जो वासना है, संस्कार है, उसके अनुसार ही आप परमात्मा का चिंतन करते हैं। और वो कहे कि जब तक सर्वशास्त्र नहीं जानोगे तब तक ये सर्वज्ञता कैसे आएगी, और सर्वात्म भाव भी नहीं आएगा। ठीक है, अब कुछ समय के बाद वो किसी एक महात्मा के आश्रम में दक्षिण भारत की कहीं गया। उन्होंने भी बड़े स्नेह से, क्योंकि बच्चा है 19-20 साल का लड़का, तो बड़े स्नेह से रखा, और किसी ने उसे ये बात कह दी। देखो बुद्धि की एक पवित्रता भी होती कि तुम सब शास्त्र जानोगे, व्याकरण जानोगे, ज्योतिष जानोगे, न्याय जानोगे, सब जानोगे, लेकिन तुमने क्या अपने आप को जाना? लौट के आ गए आश्रम में और बोला कि मैंने अपने आप को तो जाना ही नहीं, मैं सब जान के क्या करूंगा। तो ऐसा उसका अपने आप जो जानने जाते हैं तो एकांत में बैठकर हम जान लेंगे तो ज्ञानाग्नि प्रकट होगी नहीं, अविद्या का ध्वंस करेगी नहीं, और आपके जितने संस्कार हैं, वासनाएं हैं पूर्व पूर्व के, वो आपको परेशान करेंगे। और इसलिए तत्संधानम प्रवचनम, प्रवचन होना चाहिए। कहा गुरु जी हमारे तो बड़े सिद्ध महात्मा है, उनको स्पर्श करके जो वायु चलती है उससे हम धन्य हो जाते हैं, उनके दर्शन करके हम धन्य हो जाते हैं, उनके हाथ जोड़कर उनको साष्टांग प्रणाम करके हम धन्य हो जाते हैं। कुछ काम नहीं देगा, इससे भी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में जागृति होनी चाहिए, जागृवद्धि बुद्धि में यह जागृति होनी चाहिए, और वह बिना उपदेश के नहीं होगी। श्रद्धा का उपयोग यह है कि आप शांत चित्त से, स्थिर चित्त से विचार को ग्रहण करने के लिए उन्मुख हो, प्रवण हो, वह शक्ति आप में जागृत हो। श्रद्धा एक शक्ति है, जैसे अदिति के जैसे। तो बुद्धि में जो अपनी ही बुद्धि से विचार कर लेंगे तो जो पूर्व पूर्व के संस्कारों के बीज हैं वो बने रहेंगे, क्योंकि अरणि मंथन नहीं होगा। ये इस मंत्र का अर्थ है, अरणि मंथन नहीं होगा, संधान नहीं होगा। हृदय और हृदय मिलना चाहिए, चेतन से चेतन जागृत होना चाहिए, चैतन्य का यह प्रवाह है। कल स्वामी जी स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज सुना रहे थे शाम के सत्संग में कि तुम तो बोलोगे कि हम ऐसे ही सुनाए थे कि हम टीवी में सुन लेते हैं, वह जड़ प्रवचन है, वह चेतन प्रवचन नहीं है, ऐसे कल सुना रहे थे, हंस रहे थे हम लोग। तो संस्कारों का बीज बना रहेगा, मन में दुनिया के संस्कार भरे हुए, इसलिए निषेध करने में अशक्यता होगी, आप अपने आप ही नहीं कर सकेंगे। जिसके चित्त में यह संस्कार बैठा होता है कि दया बहुत अच्छी चीज है, तो वह ईश्वर को दयालु जरूर बनाएगा और कितने विस्तृत इसी का विचार वह कर देगा। जिसके चित्त में ऐसा होता है कि माता बहुत अच्छी होती है तो वह भगवान को माता बनाएगा। जिसके चित्त में होता है कि पति अच्छा होता है तो भगवान को पति बनाएगा। जिसके चित्त में होता है कि पिता बहुत पालन पोषण करता है, हमारी बुद्धि को भी जगाता है, तो वह उसको पिता रूप में देखेगा। एक महात्मा महाराज जी सुनाते थे कि एक महात्मा गए एकांत में और बहुत दिनों तक एकांत में बैठ के आए, तब उन्होंने कहा कि जहाँ कृष्ण नहीं पहुँचे, जहाँ राम नहीं पहुँचे, जहाँ शंकराचार्य नहीं पहुँचे, उसके भी आगे के पद में हम पहुँचे। विचित्र बात, ऐसा दृष्टांत दिया महाराज जी ने, कहा उसके भी आगे के पद में हम पहुँचते हैं, पहुँचे हैं, और अब आओ हम तुमको विशेष बताते हैं। और कोई कोई आजकल के अधिकांश लोग ऐसे कहते हैं कि जो सबसे बाद में आया जो धर्म वह ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने पहले के धर्मों से शिक्षा लेकर और एक नया धर्म बनाया है तो वह श्रेष्ठ है। अभी हमारा एक ईसाई भाई है, वो बोलते थे कि देखो जो ईसाई धर्म है उससे हम बहुत उदार हैं और हम जानते कि ईसाई धर्म से इस्लाम श्रेष्ठ है क्योंकि बाद में आया है, ऐसे बाद में आया, तो अपनी ऐसी उदारता भी दिखाते हैं। तो जो परमात्मा की अद्वितीयता है, जो उनकी नित्यता है, ब्रह्मता है अर्थात अपरिच्छिन्नता है, प्रत्येक चैतन्य आत्मा से अभिन्नता है, वो उसकी चर्चा नहीं और कुछ और चर्चा होती है, वो बिना विचार के नहीं होता। तो वासना और संस्कार जो है ये हमको उस माया से रहित परमात्मा को उसको जानने नहीं देंगे। तो ये माया से उपहित जो है, माया से विशिष्ट है, उसको हम नहीं जान पाएंगे और हम इसी किसी भी एक चक्कर में फंस जाएंगे। तो प्रवचन के द्वारा जब इसका माया आदि का सबका उपाधियों का निषेध होता है, तब वह गुप्त जो परमात्मा है, आपकी हृदय गुहा में बैठा हुआ जो परमात्मा है, वह प्रकट हो जाता है, जैसे अरणि मंथन से अग्नि प्रकट हो जाती है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय नैवावशिष्यते। ओम शांति शांति।